SBS हिंदी।
दोस्तों SBS हिंदी पर बात करते हैं भारत के आने वाले चुनावों के बारे में। जब चुनावों का मौसम आता है तब भारतीयों के दिल में एक रोमांच रहता है, एक उत्साह रहता है और साथ साथ चिंता रहती है अपने देश के लिए, अपने देश में आने वाली सरकार के लिए। चाहे वो उसमें मतदान कर सकें या ना कर सकें, लेकिन हमेशा से देश हित के लिए वो लोग सोचते रहते हैं। तो चलिए आज के इस अंश में जानने का प्रयत्न करते हैं NRI और जो चुनाव है उसके बीच का जो संबंध है उसके बारे में। और हमारे साथ इस विषय पर बात कर रहे हैं प्रशांत कुमार जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, PHU से। प्रशांत कुमार जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद हरिता।
सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे प्रशांत जी कि भारत में अब तक तो ये था कि NRI समुदाय के लोग मत नहीं कर सकते थे, अब कुछ समय से वो प्रावधान हुआ है कि NRIs वहाँ पर आकर अपना मत दे सकते हैं, तो उत्साह भी रहता है कि अपने मत का उपयोग किया जाए ताकि नई सरकार के गठन में उनका भी कुछ ना कुछ हो। तो ये जो संबंध है भारतीय राजकारण के साथ जो NRI समुदाय का, उसके ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे।
देखिए, हाल के दिनों में मैं मानता हूँ कि भारत की जो नीति है, डायस्पोरा नीति खास करके, वो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शनल हुई है कहीं ना कहीं, और ये श्रेय वर्तमान सरकार को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने इस पे काफी ध्यान दिया है। और जिस तरह के एक ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में भारत देश के और उनके इमोशनल और इकोनॉमिक सबसे बड़े स्टेक होल्डर की तरह NRI समुदाय को देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय चुनावों के दरमियान भी और उनके संदर्भों में भी उनकी भूमिका बहुत ज्यादा प्रदर्शित होती हुई दिखती है। मैं बनारस में रहता हूँ और अभी हाल में ही जनवरी के महीने में यहाँ पे 15वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से भी काफी NRI समुदाय के लोगों का यहाँ पे आना हुआ था। मेरी कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई थी और वे काफी समग्र तरीके से अपने को जुड़ाव हुआ महसूस करते हैं और भावनात्मक रूप से ये मानते हैं कि नई सरकार उनकी रीतियों नीतियों के आधार पर भी ध्यान दे और कहीं ना कहीं दोहरी नागरिकता का जो एक नया प्रश्न और उसके आधार पर जो नई घोषणाएं वर्तमान सरकार ने की है, उसका यकीनन एक बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं जिसको मैं देखता हूँ डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की तरह, कि जो अपने घर अपने भावनात्मक रूप से जो मिट्टी से जो जुड़ाव है उनका, वो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा उसका।
प्रशांत जी, वैसे तो भारत दोहरी नागरिकता नहीं दे रहा है, लेकिन अगर NRI समुदाय की बात करें तो उसमें कई नागरिक ऐसे हैं जो अभी भी भारतीय नागरिक हैं और कई और लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता अपना ली है, लेकिन फिर भी वो भावनाओं से भारत के साथ जुड़े हुए हैं। सो प्रश्न आपसे ये है कि कैन NRI प्ले एनी रोल, क्या कोई भूमिका है जो NRI समुदाय इसमें निभाएगा?
देखिए, मैं जैसा कि अभी पहले भी कह रहा था हरिता, कि 2014 के चुनाव में भी हमने देखा था कि जितनी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियां हैं भारत की, उनके सभी के जो विदेश के संगठन है और जो उनका एक ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने काफी सक्रिय होकर जमीनी स्तर पे काम किया। जैसे ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ BJP या इवन ओवरसीज कांग्रेस जैसे संगठनों के कार्यकर्ता बहुत सक्रिय रहे हैं, और वैसी क्षेत्रीय पार्टियों भी जिनके की रीजनल नेटवर्क्स है अपने डायस्पोरा कम्युनिटी के साथ, उनका भी हम लोगों ने देखा कि चुनाव में काफी असर रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है कि न्यूमेरिकल समुदाय के तौर पे बहुत ज्यादा असर ना पड़े न्यूमेरिकली, लेकिन जो भारत में आप 150 से ज्यादा एक डिजिटल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनता हुआ देखते हैं, जहाँ की शहरी मतदाता और शहरी इलेक्टोरेट की संख्या अच्छी खासी है और उनके ऊपर जो उनके समूह से लोग जो भाई बंधु उनके गए हैं विदेशों में, उसका असर होता हुआ कहीं ना कहीं उनके मतगणना प्रभाव पे और मतदान के बिहेवियर पे पैटर्न्स पे जरूर पड़ता हुआ दिखता है। आमतौर पे ये मान्यता भारत के समाजों में रही है, मैं देश के सबसे कुछ पिछड़े इलाकों में पूर्वांचल जो ईस्टर्न यूपी है और प्रधानमंत्री मोदी का भी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां देखता हूँ कि जो NRI समुदाय है वो कमोबेश अपने समाज के अंदर बहुत सफल और एक सुपर अचीवर की तरह देखा जाता है। तो उनका कहीं ना कहीं चुनावी मतदान और प्रक्रिया पे और उनके वोटिंग पैटर्न्स पे अच्छा खासा कम से कम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होता हुआ मुझे दिखता है। इस अर्थों में मुझे लगता है कि एनआरआई कम्युनिटीज की भूमिका भले वो सीधे तौर पे प्रत्यक्ष तौर पे मतदान में भाग ना ले, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तमाम टेलीफोनिक कॉल्स के थ्रू, फेसबुक व्हाट्सएप जैसे साधनों के थ्रू उनका जो एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा इस चुनाव पे, वो मैं बहुत मजबूती से देखता हुआ आता हूँ।
अगर चुनावी मुद्दों की बात करें तो एनआरआई समुदाय कौन से मुद्दों को लेकर?
हाल के दिनों में हरिता अगर आप देखेंगे तो हरेक राजनीतिक पार्टियों ने, खास करके जो मुख्य धारा की तीन चार बड़ी पार्टियां हैं देश में, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में एनआरआई समुदाय को लेके, डायस्पोरा समुदाय को लेके एक अलग से घोषणाएं उसमें की है, जिसमें दोहरी नागरिकता का सवाल, जिसमें प्रॉक्सी वोटिंग राइट देने के सवाल, ये दो खास करके बड़े मुद्दे हैं। आपको यकीनन ये ध्यान में होगा कि अभी भी प्रॉक्सी वोटिंग एनआरआई समुदाय को लेके लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा में वो अभी भी पेंडिंग में है और उसके लेके तमाम कुछ तकनीकी किस्म की दिक्कतें हैं, लेकिन मैं स्पष्ट मानता हूँ कि आने वाले दिनों में उस पर कुछ न कुछ भारत सरकार जरूर फैसला लेगी। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग लाइफ, ईज ऑफ ट्रेवल, ईज ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन, ये सारी जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं कि किस तरह से एक ज्यादा एक इमोशनल और इकोनॉमिक वाइब्रेंट कम्युनिटी के तौर पे डायस्पोरा अपने को फिर से इकोनॉमिक और इमोशनल इन्वेस्टर की तरह अपनी मिट्टी के साथ, अपने जमीन के साथ जुड़ाव महसूस कर पाए, इसके मुद्दे कहीं ना कहीं उनके दिमागों में रहे हैं और उनके दबाव समूह भी जितने रहे हैं दुनिया भर में फैले हुए। भारत आपको पता है कि कम से कम 3 करोड़ से ज्यादा समूह है हमारे पास, तो उनके दबाव समूहों ने भी हाल के दिनों में ये दबाव बनाया है कि नीतियों में नए तरह के स्पष्टता का एक रुझान परिलक्षित हो और कहीं ना कहीं साफ और सुरक्षित नीतियां एनआरआई के सुगम यातायात और सुगम व्यापार के लिए बनाई जा सके।
बिल्कुल प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद SBS हिंदी के लिए, आपने समय निकाला और हमसे ये बातचीत की।
धन्यवाद हरिता।
sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए।